मित्र साहब, सबका स्वागत है प्रातः काल के श्रीमद् भागवत के सत्संग में। कैरोलिन स्वराज प्रभु के निवास स्थान पे उसका धन्यवाद करते हैं कि आप सबको भगवान आप सबको भगवान श्री कृष्ण के वांगमय रूप। वांगमय रूप का अर्थ क्या है? वांग माने वाणी, वाणी मतलब शब्द वर्ण। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण है, भागवत है श्री कृष्ण का अंग। भागवत भगवान श्री कृष्ण का अंग है। अंग मीन्स पार्ट ऑफ दी होल पर्सनालिटी। तो भागवत का श्रवण मतलब भगवान का दर्शन। लेकिन एक होता है दर्शन भगवान का, एक होता है भगवान की बात सुनना। तो ये भगवान का दर्शन भी है और भगवान का जो जो बोलते हैं उसका श्रवण भी है भागवत। वैसे भागवत शब्द का भी अर्थ है भगवान के समान। भागवत वत मीन्स जस्ट लाइक, सेम एज भगवान। सो श्रीमद् भागवत के श्रवण का, भगवान श्री कृष्ण के वांगमय रूप का दर्शन और पठन पाठन का अवसर दिया है अपने निवास स्थान पे, इसका धन्यवाद करते हैं। और आपका जो ये प्रचार का जो यहाँ केंद्र है उसके सारे भक्त आप लोग उत्साह के साथ भागवत श्रवण के लिए आए हैं, आपका भी धन्यवाद। पहला स्कंद श्रीमद् भागवत। भागवत तो कल्प वृक्ष है, भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष है। परपन्न पारी जाताय, भगवान श्री कृष्ण क्या है? कल्प वृक्ष है, पारिजात है। कल्प वृक्ष का मतलब विश फुलफिलिंग ट्री। ऐसे कल दो दिन पहले पढ़ रहे थे जो भक्ति की लता है उसका बीज जब गुरुजी देते हैं कृष्ण की कृपा से, तो वो लता, लता का मतलब वाइन, वाइन समझ रहे हैं, बेल, बेल जो होती है तो किसी के सहारे पे टिकती है ना, टेक्स सम शेल्टर। तो भक्ति की लता भौतिक किस चीज का शेल्टर शेल्टर नहीं लेती है, तो किसका शेल्टर लेती है? तब शब्द लिखा है कृष्ण चरण कल्प वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण के चरण जो कल्प वृक्ष है उसके ऊपर आरूढ़ होती है, उसके ऊपर चढ़ती है। तो भक्ति की लता कृष्ण के चरण जो कल्प वृक्ष है उसके ऊपर आश्रित लेती है। कोई भी लता किसी के सहारे चढ़ती है ना, दीवार के ऊपर चढ़ेगी नहीं तो पेड़ के ऊपर चढ़ेगी, तो ट्री के ऊपर जनरली चढ़ती है, वाइन्स ट्री के ऊपर चढ़ती है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं? कल्प वृक्ष। तो वृक्ष में क्या होता है? वृक्ष में ब्रांचेज होती है बड़ी बड़ी, एक तो बड़ा स्थल होता है फिर ब्रांचें होती हैं। तो भागवत रूपी कल्प वृक्ष के 12 बिग ब्रांचेज हैं, 12 स्कंद है। स्कंद का मतलब ब्रांच, जैसे पेड़ की मोटी मोटी ब्रांचें होती है ना, फिर हर एक ब्रांच में बहुत सी छोटे छोटे डालियां होती हैं, ब्रांचेस। मोटी ब्रांच में छोटे छोटे ब्रांचेस, वो सब चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 335, 335। फिर पत्ते हैं, वो श्लोक हैं भागवत के 18,000, 18,000। लेकिन उसका फिर फल है कृष्ण प्रेम। साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति भागवत का फल है। तो हम इसके पहले स्कंद के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, मोटी पहली डाली जो है, फर्स्ट केंटो, पहला जो स्कंद है। नाइनटीन चैप्टर्स का पहला स्कंद है। इसमें तीन सेट ऑफ डायलॉग्स हैं। डायलॉग जब होगा तो एक सुनने वाला होगा, एक सुनाने वाला होगा। तो सुनाने वाले को कहते हैं वक्ता, सुनने वाले को कहते हैं श्रोता। जो भागवत गीता बोलता है उसको बोलते हैं वक्ता, बाकी जो कुछ भी कोई बोलता है उसको बोलते हैं वक्ता। थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा अंतर है, एक वक्ता एक वक्ता। प्रायः सब वक्ते हैं, वक्ता बहुत कम होते हैं। ये भागवत का श्लोक है असल में। रात ही इसके ऊपर चर्चा की थी महाप्रभु के गौर पूर्णिमा के उत्सव में। जो जबान हरि का गुण गाती है वो तो ठीक है, नहीं तो कापू की डंग है जो कुड़क 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 करके डेथ रूपी स्नेक को इनवाइट करती है, तो वक्ता है। थ्री सेटअप, वक्ता एंड श्रोता। श्रोता मीन्स सुनने वाला। तो पहला वक्ता है सूत गोस्वामी और श्रोता है नैम शरण्या के ऋषि, और थ्री चैप्टर्स उसके अंतर्गत हैं। फर्स्ट थ्री चैप्टर सूत गोस्वामी, सूता जाति का नाम है, आदमी का नाम नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी आदमी का नाम है, सूता जाति का नाम है। जैसे ब्राह्मण कोई बोल रहा है, ब्राह्मण वाचक, तो ब्राह्मण का नाम नहीं। तो ये सूता जो है ये उगर सर्वा रोमहर्षण का बेटा है। इसका पिता रोमहर्षण, वो व्यासदेव का शिष्य था, और ये सूता सुखदेव गोस्वामी का शिष्य है। इसका नाम है उगर सर्वा। ये भागवत सुनकर, किससे सुनकर? अपने गुरु से सुनकर, सुखदेव गोस्वामी से सुनकर, सुखताल में जहां परीक्षित महाराज को सुनाई जा रही थी वहां से आया। कहां आया? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थान है, ये दिल्ली से कोई 300 किलोमीटर की दूरी पे है, और लखनऊ से 100 किलोमीटर, मेरे ख्याल दिल्ली से 400 होगा, लखनऊ से 100 किलोमीटर। कोई गया आप में से नैमिषारण्य? इसको चक्कर तीर्थ कहते हैं। भगवान ने अपना चक्कर आगे रवाना किया और ऋषियों को कहा कि जहां ये चक्कर बैठेगा वहां जाकर आप कोई धर्म का अनुष्ठान करो, क्योंकि आपकी इच्छा है कि कलयुग के आन मार्च को रोकना है। ये ऋषि सब कहां बैठे थे? त्रिवेणी संगम पे प्रयागराज में, और वहां वेणी माधव, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है वेणी माधव, उसको प्रार्थना कर रहे थे कि कलयुग आ गया है, कलयुग को कैसे रोका जाए, हम कहीं बैठ के बहुत बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं। तो भगवान ने अपने चक्कर को वहां से रवाना किया, चक्कर नैमिषारण्य में आके पाताल में चला गया, वहां से पानी निकला। तो अभी वहां पानी है, उसका नाम है चक्कर तीर्थ, वहां स्नान करते हैं, और वहां गोमती नदी बहती है, गोमती नदी का तट है, जहां सूत गोस्वामी और 88,000 ऋषि हेडेड बाय सोनक ऋषि एज देयर स्पोकमैन लीडर, भृगुवंशी शौनक ऋषि किए। और ये सारे ऋषि कैसे थे? ऊर्ध रेता, ऊर्ध ऊर्ध मतलब ऊपर जाने वाला, रेता मीन्स जनरेटिंग एनर्जी, जनरेटिंग एनर्जी जो ह्यूमन बीइंग की होती है वो संसार में नीचे की तरफ जाती है, लेकिन जो ऋषि लोग हैं वो संसार में प्रवेश न करते हैं, उसी को ऊपर ले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध रेता, इसका मतलब ब्रह्मचारी। सेलिब्रेट शब्द है 88,000। और सूत अग्रस्त था, तो इन और इन ऋषियों ने कितने प्रश्न पूछे? दे आस्क्ड 6 क्वेश्चंस, क्योंकि भगवान के विषय में पूछना है। भगवान षडगुण संपन्न है, 6 भग का मतलब 6 होता है, तो 6 ही प्रश्नों में भगवान को स्थापित करना है, तो 6 प्रश्न पूछे हैं, उसके उत्तर में पूरी भागवत है। तो पहले वक्ता सूत गोस्वामी है, श्रोता नैम शरण्य के ऋषि है, ये पहले 3 अध्याय। नेक्स्ट 3 अध्याय जो है उसमें वक्ता है नारद और श्रोता है व्यासदेव। व्यासदेव कलयुग में, कलयुग के आने से पहले द्वापर के अंत में कलयुग के लोगों के लिए वैदिक शास्त्र को सरल किया, सिंपल किया, एक वेद को 4 में बांट दिया, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उपनिषद लिखे, ब्रह्म सूत्र लिखा, वेदांत सूत्र लिखा, फिर भी कहा कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे, फिर उन्होंने पुराण लिखे, हिस्ट्रीज लिखी बाय गांधेज जी की, उसके साथ टीचिंग लिखी, फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर महाभारत लिखा जिसके अंदर भगवद गीता को दे दिया, क्योंकि उसने देखा कि आने वाले भविष्य में और वैसे भी स्त्री वैश्य शूद्र इनको अधिकार नहीं होता है वेद उपनिषद पढ़ने का, इसलिए महाभारत विशेष रूप से कलयुग के लोगों के लिए रखा, लिखा, उसके अंदर भगवद गीता को रख दिया। और भगवद गीता को महाभारत से कोई भी पढ़ सकता है, वैसे नहीं पढ़ सकता है वेद, ये बहुत बड़ी युक्ति की। फिर भी अनसेटिस्फाइड था कि अभी तक कुछ रहता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। व्यासदेव, व्यासदेव का आश्रम कहाँ है? व्यासदेव का आश्रम है बद्री का आश्रम, बद्री का आश्रम। आप में से कोई गया बद्री का आश्रम? तुष्टि गई, माता जी गई, 2 गए। बद्री का आश्रम से 2 किलोमीटर ऊपर व्यासदेव का आश्रम है, गांव है माना, उस माना गांव के ऊपर पहले एक केव है, उसका नाम है गणेश गुफा, और उसके ऊपर 50 मीटर की दूरी पे व्यासदेव का केव है। गणेश का केव क्यों है? क्योंकि गणेश स्टेनोटाइपस थे व्यास के, वो सब लिख रहे थे, कंपाइलेशन गणेश ने किया है, तो वहां व्यासदेव। और उसी गांव के दूसरे तरफ देखने के लिए है सरस्वती नदी, ऐसे 5 सरस्वतियां बहती थी भारतवर्ष में, लेकिन दिखती सिर्फ एक है और वही दिखती है और कहीं नहीं दिखती, यू कैन ओनली सी इट देयर। तो वह सरस्वती के तट पे बैठे हैं व्यासदेव, ऐसे लिखा है सुबह नहाकर। तो वो जगह भागवत के पढ़ने वालों को, भागवत के अध्ययन करने वालों को कभी उस जगह को देखना चाहिए, क्योंकि जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय उदेर्यत, इसका अर्थ क्या है? मैं नर नारायण ऋषि को, भगवान नर नारायण को और नर श्रेष्ठ नर को प्रणाम करता हूं। ये नर नारायण भी बद्रीनाथ में, जो वहां का मंदिर है बद्रीनाथ का, वो नर नारायण का मंदिर। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तम देवीम सरस्वतीम व्यासम, व्यासदेव का आश्रम भी वहां है, सरस्वती भी वहां बहती है। भागवत ततो जयम, भागवत, भागवत का नाम है ततो जयम, जो conquers the darkness of Kali Yuga. ये भागवत को प्रणाम है, तो भागवत भी वही रचना की गई, तो वो स्थान है जहां भागवत की रचना हुई है, गीता की भी रचना वहां हुई है, क्योंकि महाभारत वहां लिखी गई। वो जगह आउट ऑफ वर्ल्ड है, इस दुनिया की जगह नहीं है, वो देव भूमि है। छह महीने ही खुलती है, छह महीने बंद होती है। जब भारत में मई जून में 43-44 डिग्री टेम्परेचर होता है, तब वहां 0 डिग्री के 340 माइनस ऐसे टेम्परेचर होगा, बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल जगह है, कभी जाना चाहिए उसको देखने के लिए। भागवत सुनेंगे तो वो जगह दिखेगी कि व्यासदेव वहां रहते थे, मध्वाचार्य वहां गए थे और वहां व्यासदेव उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तब मध्वाचार्य ने टीकाएं लिखी। तो हम मध्व संप्रदाय के हैं, मध्वाचार्य वहां निश्चित रूप से गए थे दो बार, ऐसे उसका वर्णन आता है। तो दूसरा डायलॉग जो है वो नारद और व्यास देव के बीच में, वैसे नारद वहीं रहते हैं क्योंकि नारद का इष्ट देव नारायण है और भारतवर्ष का इष्ट देव नर नारायण है और उसकी पूजा नारद करते हैं, ऐसे भागवत के पांचवें स्कंद में वर्णन आता है। इसलिए जब वहां जाएंगे बद्रीनाथ में, उस दिन बद्रीनाथ उनका नाम क्यों पड़ा ये बता रहे थे महाराज कृष्णदास, किसी ने सुना होगा। तो भगवान नरनारायण बहुत तपस्वी हैं, ये भागवत के चौथे स्कंद में इसका वर्णन आता है। धर्म के बेटे हैं और मूर्ति इनकी माता का नाम है, मूर्ति और धर्म के पुत्र भगवान नरनारायण, चौथे स्कंद भागवत में पहले इसका वर्णन। तो इतनी तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि इनको छाया देनी चाहिए और खाने के लिए कुछ फल फूल देना चाहिए। तो लक्ष्मी देवी ने क्या किया, बेरी का रूप धारण कर लिया, बेरी का पेड़, बेर के पेड़ का रूप धारण किया और उस नरनारायण उसके नीचे बैठे और उसके बेर गिरे, वही फल खाए। तो लक्ष्मी जी बेरी बन गई और भगवान लक्ष्मी नाथ है तो उनका नाम हो गया बद्रीनाथ। बेरी को संस्कृत में बद्री बोलते हैं, तो वो हो गया बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ में भागवत की रचना हुई और ये डायलॉग, पहला डायलॉग कहां है, नैमिषारण्य में, दूसरा कहां है, बद्रीनाथ में। संपायन आश्रम का नाम मेरे ख्याल में व्यासदेव के आश्रम का नाम संपायन ऐसे कुछ है, एक नाम भागवत में ऐसे लिखा है, इसमें आएगा छठे अध्याय में। तो दूसरा कहां भागवत का वर्णन आता है, एक नैमिषारण्य पहला, दूसरा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये नैमिषारण्य में बात चल रही है, इसके बाद तीसरे अध्याय के बाद जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ की। और फिर तीसरा डायलॉग जो मेन है उसमें वक्ता सुखदेव गोस्वामी है और श्रोता परीक्षित महाराज है। तो उसमें पहले तीन अध्याय श्रोता वक्ता, दूसरे तीन अध्याय छह हो गए, 19 में से बाकी बच गए 13 में से 12 चैप्टर 12 अध्याय श्रोता की महानता है, हाउ क्वालिफाइड वाज लिस्नर ऑफ भागवतम परीक्षित महाराज। तो परीक्षित के पितृकुल और मातृकुल की महानता का वर्णन है। परीक्षित के मातृकुल में उत्तरा, द्रौपदी और कुंती की प्रार्थनाओं का वर्णन है, तीन पीढ़ी माताओं की। ये माताओं आपके लिए बहुत गौरव की बात है, इट इज ए प्रिविलेज एंड प्रेस्टीज फॉर यू टू नो भागवत में पहली प्रार्थना एक नारी की है, माता की है। भागवत में पहला स्थान कुंती की प्रार्थना को, उत्तरा की प्रार्थना को दिया गया है। तीन पीढ़ियों की ये माताओं की भागवत कृष्ण भक्ति से परीक्षित पैदा हुआ, थ्री जनरेशन, तीन पीढ़ियों की भक्ति का इसमें वर्णन है। और फिर पितृकुल में व्यासदेव के पुत्र हैं पांडु, कोई साधारण पांडु व्यक्ति नहीं है, ये तो कौरव कुल के नहीं है, व्यास के पुत्र हैं पांडु। और पांचू पांडव देवताओं का अंश है, इंद्र से अर्जुन हुआ, वायुदेव से भीम हुआ, धर्मराज से युधिष्ठिर हुआ, नकुल सहदेव अश्वनी कुमार है, तो ये भी साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इन सब का वर्णन है कि श्रोता किसी भी अच्छा भक्त बनने के लिए तीन तीन पीढ़ियों का परिश्रम लगता है। वैसे भी गंगा को इस धरती के ऊपर लाने के लिए तीन पीढ़ी लगी सूर्यवंश की, अंशुमान, दिलीप और भागीरथ, तीन राजाओं ने तपस्या की तब गंगा धरती पे आई। तो ऐसे लगता है तीन पीढ़ियों के परिश्रम के बाद परीक्षित पैदा हुआ है जिसको भगवान ने, और परीक्षित को ऐसे दिखाया है बड़े संकट से गुजरता हुआ जैसे देवकी और वसुदेव संकट से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को प्रकट होना है, उनके भी बच्चे मारे गए, यहां भी शाप मिला, लेकिन शाप क्यों मिला? परीक्षित को तैयार किया जा रहा था देवकी की तरह भागवत के अवतार के लिए, भागवत की इनकार्नेशन के लिए परीक्षित को तैयार किया जा रहा था। तो परीक्षित की महिमा और एक अध्याय में सुखदेव गोस्वामी के वक्ता की महिमा है, ऐसे 19 अध्याय विशेष रूप से पहले स्कंद में आते हैं। तो जो 6 प्रश्न हैं उसमें से पहला प्रश्न है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, कलयुग के लोगों को कोई एक काम क्या करना चाहिए, तो ये जो दूसरा अध्याय है इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर आ गए। पहले प्रश्न का उत्तर क्या आया था? पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? सवई पंचम परो धर्मो, दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कि केवल धर्म वो है, एक ही धर्म है जिसमें व्यक्ति के हृदय में जो भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, वो प्रकट हो जाए, वही धर्म। फिर सबके लिए आप एक काम क्या है? श्रोतव्यम, कीर्तव्यम, स्मर्तव्यम, पूजत्यम, ध्यतम, एक श्लोक आता है 14, कि सबको यही एक काम करना है, चाहे दुनिया में किसी भी रास्ते को मानने वाला है, लेकिन काम ये वो करना पड़ेगा, भगवत कथा सुननी पड़ेगी, भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। फिर प्रश्न पूछा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो इसके प्रश्न के उत्तर में ये तीसरा अध्याय, थर्ड चैप्टर फुल है कि भगवान के अवतार कौन से हुए, क्यों हुए, और फिर प्रश्न है कि कृष्ण क्यों देवकी और वसुदेव के घर में प्रकट हुए, और फिर प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती से ऊपर से चले गए तो फिर धर्म ने किसका शरण लिया, वो लास्ट क्वेश्चन है। और उस लास्ट क्वेश्चन का उत्तर इसी अध्याय में आएगा आगे, कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने भागवत का शरण लिया। तो ये प्रूफ है कि भागवत और श्री कृष्ण समान है। श्री कृष्ण धर्म स्थापित करने के लिए आए, श्री कृष्ण चले गए तो भागवत ही धर्म स्थापित करने के लिए है, उनकी जगह पे वो आए। ये 6th क्वेश्चन का आंसर, इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और भागवत समान है। भगवान करते क्यों है क्रिएशन? ये जो आपने आज पर्पट पढ़ा उसमें लिखा है भगवान, पहले ये क्रिएशन भगवान की है किसके लिए, है क्या ये क्रिएशन? इट हैज 2 फंक्शंस। ये कंडीशन सोल के लिए है, बद्ध जीवों के लिए है, ये मटेरियल क्रिएशन फॉर कंडीशन सोल, बद्ध जीव, जैसे इसको दूसरा नाम है इसका प्रिजन, जेल। इसमें काम क्या है? कि जिसने जो मटेरियल डिजायर की उसको भोगने के लिए इस दुनिया में आना पड़ता है। मटेरियल डिजायर जो भी की और जो भी कर्म किया उसको भोगने के लिए इस दुनिया में आना पड़ता है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? इस क्रिएशन का, कि वो तो अपना कर्म भोगने आएगा, अपनी डिजायर को पूरी करने आएगा, इच्छा को। लेकिन यहां शिक्षा दी जाती है भगवान की कृपा से कि आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे में, कभी न कभी ये भूला भटका बद्ध जीव भगवान की कथा और लीलाओं में रुचि रख के वापस भगवान के धाम चला जाए। इसलिए क्रिएशन करने का दूसरा कारण। जैसे जेल में भी दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो देता है पनिशमेंट और एक रिफॉर्मेशन करता है कि वापस जाके दोबारा ऐसा काम नहीं करना। तो एक पनिशमेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो गुनाह किया है वो तो भोगना पड़ेगा, जो पाप किया है वो भोगना पड़ेगा, और दूसरा दोबारा पाप न करे इसके लिए शिक्षा दी जाती है। तो ये क्रिएशन का उद्देश्य है। अब क्रिएशन होती कैसे है? भागवत में या किसी भी पुराण में, उसको पुराण तब कहेंगे जब उसमें 10 सब्जेक्ट मैटर होंगे। जैसे भगवत गीता में श्री प्रभुपाद ने लिखा है, भगवत गीता हैज 5 सब्जेक्ट मैटर्स। तो एनी पुराण इज कॉल्ड पुराण जब उसमें 10 सब्जेक्ट मैटर, 10 सब्जेक्ट मैटर होंगे। 10 से कम होंगे तो उसको उप पुराण कहेंगे, पुराण नहीं कहेंगे। और ये सब्जेक्ट मैटर दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक में है, 2:10:1, 10 सब्जेक्ट मैटर। और उस अध्याय का नाम है Krishna is answer to all the questions, ऐसे कुछ नाम है, भगवान सब प्रश्नों के उत्तर है, ऐसा कुछ समथिंग उसका नाम है। सेकंड चैप्टर का लास्ट, सेकंड कैंटो का लास्ट अध्याय देख लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट चैप्टर भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, कृष्णा न भागवतम इज आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ये उस अध्याय का नाम है। भागवत सारे प्रश्नों का उत्तर है। और 10 सब्जेक्ट मैटर क्या है ये सुन लीजिए। श्री शुक उवाच, अत्र मतलब इसमें है, सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं उतयः मनवंतरैषानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। सुखदेव गोस्वाम सेड इन श्रीमद् भागवतम देर आर 10 डिविजन्स ऑफ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी फॉलोइंग, दीज आर 10 सब्जेक्ट मैटर्स, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यही हम अब डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए पहले स्कंद का नाम प्रभुपाद ने क्या लिखा है, फर्स्ट कैंटो क्या लिखा है, क्रिएशन, देखना लिखा है क्रिएशन, क्रिएशन। तो ये क्रिएशन किसको बोलते हैं, सर्ग। सो फर्स्ट इज सर्ग, दूसरा क्या है, सब क्रिएशन। अब तीसरे स्कंद को देखेंगे लिखा होगा सब क्रिएशन, टर्शरी क्रिएशन, सब क्रिएशन। सब क्रिएशन मीन्स क्रिएशन बाय ब्रह्मा, विसर्ग मतलब क्रिएशन बाय ब्रह्मा, फर्स्ट क्रिएशन मीन्स क्रिएशन बाय विष्णु। तो सर्ग का मतलब भगवान विष्णु की सृष्टि, और विसर्ग का मतलब ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं। देन है प्लानेटरी सिस्टम, स्थान, प्लानेटरी सिस्टम कहां सृष्टि होगी, उसके लिए ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ उसकी। प्रोटेक्शन बाय लॉर्ड, जो भगवान सृष्टि करता है तो उसकी रक्षा भी करता है, पोषण। क्रिएटिव इम्पेटस उती है, कैसे क्रिएशन होती क्यों है, कर्मों के आधार के ऊपर, जीव की वासना के आधार के ऊपर। ऊती का अर्थ होता है कर्म वासना, वासना का अर्थ होता है वासना, वासना का अर्थ आता है समझते हैं वासना क्या किसको बोलते हैं, जैसे कोई आदमी सेंट लगा के आपके आगे से गुजर जाए, आदमी चला जाएगा सेंट चला जाएगा लेकिन खुशबू रहेगी ना, तो सेंट रहेगी ना, उसको बोलते हैं वासना। एक बात ये हुई, एक बाहर की वासना। एक वासना है कि हमने एक महीना पहले मानो कि आप वृंदावन गए थे, वहां आपने रबड़ी खाई रसगुल्ला खाया, अब यहां बैठे हुए जब वृंदावन का नाम आएगा तो आपको रसगुल्ला याद आएगा, तो ये वासना हो गई रसगुल्ले की। जब हम कोई देश देख के आते हैं देश को साथ नहीं लाते हैं, लेकिन वहां से जो खाया पिया जहां रहे हैं वो चीजें साथ लाते हैं। हमारे दिमाग में आती है कि नहीं आती? ये आपको कोई पूछे कि भाई वृंदावन में क्या है तो लोग पेड़ा, वृंदावन का पेड़ा मशहूर है, तो उनको पेड़ा ही दिखेगा कि वो वासना उस चीज की हो जाती है। तो हमारी जो वासनाएं होती हैं वो हमको दूसरा जन्म दिलाती है। ये मन के अंदर वासनाएं होती हैं कर्म की, तो उसको ऊती कहते हैं। फिर मन वंतर, फिर ये जब मटेरियल वर्ल्ड बनेगा, जब दुनिया बनेगी तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी चलानी पड़ेगी, उसकी गवर्नमेंट बनेगी, तो वो मनवंत्र कहते हैं। एक एक मनु आता है ब्रह्मा के, एक दिन में 14 मनु की गवर्नमेंट चलती है, एक दिन में ब्रह्मा के 14 बार मनु बदलते हैं। मनवंत्र के बाद ईशानु कथा, द साइंस ऑफ गॉड रिटर्निंग होम बैक टू गॉड इज ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, अनुमिंत मतलब उसके फॉलोअर, भगवान के भक्त, उनकी कथा 9वें स्कंद में है, 9th कैंटो में। ये भगवान की कथा सुनने से, भगवान के भक्तों की कथा सुनने से भगवत धाम के जाने का अधिकारी कोई हो जाता है। और फिर 10वां अध्याय है आश्रय, यानी कहें समम बोनम, भगवान ही सबको, सबका आश्रय है श्री कृष्ण। बीच में है मुक्ति और निरोध, जो 11वां स्कंद है उसका नाम है मुक्ति, 12वां स्कंद निरोध है। मुक्ति का मतलब लिबरेशन और निरोध का मतलब सब कुछ भुला के भगवान याद आ जाए। तो ये 10 सब्जेक्ट मैटर है। तो पहले सब्जेक्ट मैटर क्रिएशन का वर्णन अब शुरू हो रहा है। कौन क्रिएशन करता है? भगवान करता है। कैसे करता है? आइए जी आज का श्लोक पढ़ते हैं। सूत वाचा जग्रहे पौरुषम् रूपम् भगवान् महत् आदिभिः सम्भूतम् षोडशकलम् आदौ लोका सिसृक्षया। ये पहला श्लोक है। सूत उवाच जिग्रहे पौरुषम् रूपम् भगवान् महद् आदिभिः सम्भूतम् षोडशकलम् आदौ लोक सिसृक्षयः। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषि सुन रहे हैं। ये कहां आपको बताया था हो रहा है? नैमिषारण्य। व्यास और नारद का संवाद कहां हो रहा है? बद्री काश्रम से ऊपर व्यास देव के आश्रम में। और तीसरा डायलॉग जो चल रहा है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित के बीच में, यह कहां हो रहा है? सुखताल। ये जगह का नाम है सुखताल। ये गंगा जी के तट के ऊपर है। हरिद्वार से गंगा निकल के आगे आती है तो एक स्थान है, उसका नाम है सुखताल। और वो जगह पुराने हस्तनापुर के बिल्कुल बाद में एक गांव है, उसका नाम है हस्तनापुर। वहां से परीक्षित महाराज चल के गंगा के तट पे गए, उसका नाम है सुखताल स्थान का। तो ये सुखताल स्थान भी कभी जाके देखा जा सकता है। वहां एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, बनियान ट्री है, बहुत बड़ी, बहुत कई हजारों साल पुरानी है, और नहीं तो भी 200-300 मीटर से लंबाई उसकी घेरा, इतना बड़ा है। और ऊपर रेज प्लेटफॉर्म पे है, छोटा सा जैसे छोटी सी पहाड़ी हो, और सुखदेव गोस्वामी उसके ऊपर आकर बैठे थे। आसन उन बना है उस पेड़ के नीचे, और परीक्षित महाराज और सारे ऋषि नीचे बैठे थे, तो वो उस जगह का नाम है सुकताल। वो जगह भी जाके कभी देखी जा सकती है, क्योंकि भागवत के हम स्टूडेंट हैं और भागवत हमारा धर्म है। वी आर स्टूडेंट ऑफ भागवत, हम भागवत हमारा धर्म है। तो ये तीन स्थानों पे भागवत कही गई है, इन तीन स्थानों का कभी समय भगवान जिसको कभी मौका दे तो इसका लाभ लेना चाहिए, इन तीनों स्थानों को देखना चाहिए। तो अब यहां नैमिषारण्य में सूत्र गोस्वामी क्या कह रहे हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड फर्स्ट एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इन यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ पुरुष इनकार्नेशन एंड मैनिफेस्टेड ऑल द इनग्रीडियंट्स फॉर मटीरियल क्रिएशन एंड दस एट फर्स्ट देर वॉज क्रिएशन ऑफ 16 प्रिंसिपल मटीरियल एक्शन दिस वॉज फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द मटीरियल यूनिवर्स। जब ग्रहे ग्रहण किया, भगवान ने ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया, पौरुषम रूपम पुरुष अवतार, अवतारों में पहले पुरुष अवतार का वर्णन है। और पुरुष अवतार किसको कहते हैं, महाविष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हैं, उसका नाम है कारुण उदक शाही विष्णु। ये पहला विष्णु, उदक का मतलब क्या होता है, वाटर, उदक मतलब वाटर। भगवद गीता में श्लोक है, छोटे कुएं का पानी और तालाब का पानी, वहां शब्द उदक है वाटर के लिए। कारण, कारण मतलब काज, उदक मीन्स पानी, शयी मतलब शयन करना, सोना। जो कारण सागर पे सोते हैं उसका नाम है कारुण, अरे कृष्णा, कारुण उदकशाही विष्णु। मैंने कहा कारण सागर में विष्णु सोता है, सब वो सो गई, विष्णु सोता है तब भी दुनिया पैदा होती है, हम सोते हैं तो खोते हैं। कारुण उदकशाही विष्णु पहला पुरुष अवतार है, इसको यूनिवर्सल अवतार लिखा है, यूनिवर्सल फॉर्म, इसको यूनिवर्सल फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे यूनिवर्स इसके अंदर से निकलते हैं। यूनिवर्सल फॉर्म क्यों कहते हैं कि सारे यूनिवर्स कारुण दक्षाई विष्णु के रोम, रोम कोप से निकलते हैं। प्रणाम जी, रोम मीन्स हेयर, कोप मीन्स होल, पोर्स, जो स्किन में पोर्स होते हैं वो एक एक पोर से हमारे क्या निकलता है, भागेंगे तो पसीना, क्या बोलते हैं पसीने को, टांस प्यार, पसीना निकलता है ना, काउंट कर सकते हैं कितने ड्रॉप निकले, नहीं कर सकते ना। ऐसे कारुण दक्षाई विष्णु के शरीर से एक एक पूरा यूनिवर्स निकलता है, ब्रह्मांड निकलता है, जैसे हमारा पसीना निकलता है। अच्छा, उस पसीने में आपके विचार में कितने जर्म्स हो गए, जर्म्स, जर्म समझते हैं, जर्म तो हाँ, बैक्टीरिया वायरसेस, एक पसीने के एक ड्रॉप में कितने होंगे, जाके कभी मेडिकल वाले को देख के देखो, वो भी कहेगा इन्यूमरेबल, अनकाउंटेबल होते होते हैं कि नहीं होते। तो कारण दक्षिणाई की विष्णु से के शरीर से रोमकोप से एक पसीने जितना ड्रॉप निकलता है, प्रभुपद ने कहा जस्ट लाइक ए पी, मटर के दाने जितना, फिर वो आस्ते आस्ते बड़ा होने लगता है यूनिवर्स, और उसके अंदर ब्रह्मा से लेके एक छोटी चोटी तक सब पैदा होते हैं, उसके अंदर सब कुछ है। तो क्योंकि सारे यूनिवर्स उसके, तो जब पसीने में इतना कुछ हो सकता है हमारे पसीने में। उस दिन कोई बात हमने कही थी, स्वराज कहता है ये मेरा घर है, और माता जी कहां गई, पूनम कहती है मेरा घर है, दो बच्चे कहते हैं मेरा घर है, लेकिन यहां इतने सारे मच्छर चुंटियां हैं, वो बाहर जाके कहती है ये हमारा घर है, दे क्लेम इट इज अवर हाउस। वो अपने समाज में जब जाती है ना कहीं, तो बोलते कहां से आए, बोले ये हमारा घर है। वो अब आप रहते हैं चार, दे आर फोर फैमिली मेंबर, और वो होंगे 4 मिलियन, तो किसका मेजॉरिटी उनकी है ना। कितने मिलिंग एंटिटीज और इस घर में रह रहे हैं, अरे आप कभी काउंट किया है? वो भी बाहर जाते होंगे ना, उनकी भी कोई समाज होगा, कहीं शादी होगी, तो कहां से आए हैं, वो अपनी एड्रेस तो इसकी लेके जाते हैं कार्ड के ऊपर। हम कहते हैं हमारा है, लेकिन हमारा है कि वो कितने इसके मालिक है, मालूम है कितने मालिक है। ये ग्रास और ये भी लिविंग एंटिटीज है, ये भी कहते हैं हम इस घर में रहते हैं। तो जब एक घर में इतने सारे लिविंग एंटिटीज रह सकते हैं, एक ड्रॉप पसीने में इन्यूमरेबल जीव रह सकते हैं, तो भगवान के शरीर से, पुरुष के शरीर से निकले हुए एक रूम कुब से एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड हो तो कौन सी बड़ी बात है। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। अब यूनिवर्स तो बाहर आया, अंडा आया बाहर, लेकिन उसमें पैदा कुछ नहीं होगा, कब तक? जब तक उसके अंदर दोबारा भगवान विष्णु प्रवेश नहीं करेंगे। तो दोबारा जो पुरुष प्रवेश करता है उसका नाम है गर्भो उदकशायी विष्णु। गर्भ सागर अपने जल से, अपने शरीर से जल पैदा करता है, तो उसका नाम है गर्भ, और बन जाता है सागर। तो गर्भ सागर का जल, उदक जल, शाही सोने वाला, वो कितना विष्णु होता है? जितना ये ब्रह्मांड है उतना लंबा विष्णु होता है, जितना ब्रह्मांड है उतना लंबा विष्णु होता है। आप समझ रहे कितना होगा? आप इसका दुनिया में दिखाने के लिए दक्षिण भारत में मंदिर है, अनंत पद्मनाभ विष्णु का मंदिर है, अनंत पद्मनाभ। चैतन्य महाप्रभु वहां गए थे, चैतन्य चैतन्य से उसका नाम आएगा, अनंत पद्मनाभ है। और तिरुवट्टा में उसी अनंत पद्मनाभ का बिल्कुल वैसा ही दूसरा मंदिर है जहां चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्म संहिता मिली थी। उस मंदिर में भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए 3 दरवाजे से देखना पड़ेगा। भगवान विष्णु सोए हुए हैं, एक दरवाजे में जाएंगे केवल चरण देखेंगे, लक्ष्मी चरण दबाती हुई दिखेगी। बीच के दरवाजे में जब आएंगे तो केवल नेवल दिखेगी और कमल की डांडी, कमल का फूल और ब्रह्मा दिखेगा। और एक फर्स्ट दरवाजे में आएंगे तो भगवान का मुख दिखेगा, योग निद्रा में सोए हुए। इतना बड़ा दिखाने का उद्देश्य यह है कि जितना बड़ा मंदिर है उतना बड़ा विष्णु है, जितनी बड़ा ब्रह्मांड है उतना बड़ा विष्णु है उसमें। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड के अंदर छोटा सा विष्णु, ऐसा नहीं है, बहुत उसकी लंबाई चौड़ाई पूरे उस ब्रह्मांड जितनी है। तो गर्भ उदकशायी, तो भाई गर्भ सागर में शयन करते हैं वो विष्णु, उसकी नाभि से एक स्टेम निकलती है कमल की, लोटस स्टेम निकलती है। क्या होता है, जब क्रिएशन करनी होती है तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उसके पेट के अंदर सारा विश्व समाया होता है। किसका होता है? उसमें, पेट में। इसलिए दामोदर अष्टक में आखिरी श्लोक क्या है, विश्वस्य धामने त्व उदार, तो उदर, तुम्हारा पेट जो है ना भगवान, ये क्या है, विश्व धाम ने, सारा विश्व इसमें समाया हुआ है, भगवान के पेट में सारी दुनिया समाई हुई है, ये विष्णु की बात है। तो वैसे तो पहले पेट में पड़ा होता है, जब वो क्रिएशन करनी होती है तो उनका जो नाभि का स्थान है ये बिल्लू होता है, बिल्लू होता है, और फिर वहां से एक लोटस का स्टेम निकलता है, और उस लोटस के स्टेम में 14 फ्लोर्स होते हैं, 14 लोक है ना, तो एक एक लोक एक स्टोरी की तरह, एक बिल्डिंग होती है ना 14 स्टोरी जैसे बिल्डिंग हो, ऐसे उसके अंदर 14 लोक है, 14, और फिर एक उसके ऊपर कमल कितना बड़ा कमल होता है, जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतना बड़ा कमल का फूल होता है। उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रकट्य होता है और ब्रह्मा जी चारों ओर देखते हैं, उनके चार सर हो जाते हैं। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु से उस यूनिवर्स में क्रिएशन कैसे होती है उसका वर्णन है। फिर ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, ये तीसरे स्कंद में आएगा, दूसरे में भी थोड़ा इसका वर्णन है। फिर जब क्रिएशन हो जाएगी तब हर एक जीव में, हर एक अणु में, हर एक परमाणु में, ईच इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी है आइटम, उन सब में तीसरा पुरुष अवतार प्रवेश करता है, उसका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु। ये विष्णु परमात्मा है, ये जो तीसरा विष्णु है ये परमात्मा है, ये सबके हृदय में बैठता है आकर। परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु को परमात्मा कहते हैं, और जितने अवतार आते हैं वो क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। इसलिए क्षीर सागर के ऊपर जाके प्रार्थना करता है ब्रह्मा। तो अवतार सब प्रायः क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं, इसलिए जब कोई आपको प्रचार में कहे कि सब अवतार विष्णु से आते हैं तो मानना हाँ सही है, यू आर राइट, आप सही है। कौन से विष्णु से आने, फिर उससे पूछना कौन से विष्णु से आना है, तब उसको पता नहीं होगा, बोले विष्णु 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 से विष्णु है विष्णु, फिर वो विष्णु हो जाए, बस वो फिर ऊपर घूम जाएगा। आप हाँ बोलना, झगड़ा मत करना, बोला हाँ सब विष्णु से आते हैं, फिर पूछना कौन से विष्णु से, फिर उन्हें विष्णु बस वजह करेगा, तब उसको बोलना तीन विष्णु होते हैं, फिर वो सुनेगा। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु से सब अवतार आते हैं, क्षीर सागर में प्रार्थना होती है, तब वो सब मानेगा। फिर पूछ, फिर बोलेंगे कि ये महाविष्णु कहां से आता है, तब क्यों, अब उसको मालूम हुआ कि आपको जानकारी उससे ज्यादा है, तब फिर वो सुनेगा। आप पहले कहोगे नहीं विष्णु से नहीं आता है, कृष्ण भगवान है, तो बोला जाए तुम हमारा सर मत खाओ जाओ, तो वो नहीं सुनेगा, उसकी बात मान लेना। और सही है, सारे अवतार विष्णु से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है, सारे अवतारों का स्रोत है, कृष्ण इज द सोर्स, स्रोत, स्रोत का मतलब सोर्स, सारे अवतार कृष्ण से निकलते हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, ये डिफरेंस है। तो यहां पहले ये तीन पुरुष अवतारों का वर्णन है। The Bhagavad Gita states that personality of God Sri Krishna maintains these material universes by extending his plenary expansions. कहाँ लिखा है Bhagavad Gita में? The Bhagavad Gita states that personality of God and Sri Krishna maintain these material universes by extending his plenary expansions. प्रॉपर ऐसे स्टेटमेंट दिए कहां से आई? भगवत गीता का नाम लिख के प्रॉपर ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सारे यूनिवर्सेस को कृष्ण अपने प्लेनरी एक्सपेंशन से मेंटेन करते हैं। कहां है? पहली लाइन को ढूंढना बहुत मुश्किल है, प्रॉपर ने लिख तो दिया है लेकिन समझ में कैसे आए? गर्भम ददामि अहम, चौदहवें अध्याय में देखना, चौदहवें अध्याय में इसका वर्णन है कि भगवान को जब सृष्टि करनी होती है तो ये महद ब्रह्म में भगवान, ये प्रकृति है उसके गर्भ में भगवान गर्भ स्थापित करता है, जो गर्भ स्थापित करता है वही उसका पालन पोषण करता है। तो एक तो वहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा, ये इसके एक एक स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कहां से आई, कहां से आया ये। फिर सर्वस्चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, सबका पालन पोषण करता हूं, एक कण कण में मैं समाया हुआ हूं परमात्मा के रूप में। तो ये एक लाइन है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कहां से आई है, इसको देखना चाहिए कभी। ये पहली लाइन है, सो दिस पुश फॉर्म इज द कन्फर्मेशन ऑफ द सेम प्रिंसिपल। प्रभुपाद ने भगवद गीता की जो ये स्टेटमेंट है उसकी कन्फर्मेशन ये पुरुष फॉर्म है, पुरुष अवतार। तो वहां क्या लिखा है, यहां आगे आएगा, पुरुष अवतार क्या करते हैं, दृष्टि डालते हैं, दृष्टि डालते हैं, ग्लैंसिंग एट द मटीरियल, और उसमें हलचल पैदा होती है। ये नवे अध्याय का भी वर्णन है और चौदहवें अध्याय में भी इसका वर्णन है। तो नवे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, मैं सब में हूं तब सब चल रहे हैं, और मैं सब में नहीं भी हूं, सब मुझ में है मैं उनमें नहीं हूं, ये जो श्लोक है ना ये इसका वर्णन है। भाई इस पूरे यूनिवर्स में अभी हमने पढ़ा ना कि भविष्णु है, कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, है भी नहीं भी है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो प्रभुपाद ने लिखी है, मैं सब में हूं लेकिन सब में मुझ में नहीं है, सब मुझ में है लेकिन मैं वो सब में नहीं हूं। ये नवे अध्याय की स्टेटमेंट है। देखिए दोनों श्लोक ये याद है किसी को, तो ये इसको रेफर कर रहे हैं प्रभुपाद जी। और फिर क्या करें, ये दिस पर्सन सेम पर्सन द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वासुदेव और कृष्णा हु इज फेमस एज सन ऑफ किंग वासुदेव और किंग नंदा इज फुल विथ ऑल ऑपुलेंसेस ऑल पोटेंसीज ऑल फेम ऑल ब्यूटी ऑल नॉलेज एंड ऑल रेनाउंसिएशन। ये छह गुण बताए हैं जो भगवान में होते हैं, षड गुण। पार्ट ऑफ हिज ऑपुलेंसेस आर मैनिफेस्टेड एज इम्पर्सनल ब्रह्म। भगवान का जो ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस का मतलब ऐश्वर्य, उसका कुछ भाग पार्ट वो इम्पर्सनल ब्रह्म के रूप में मैनिफेस्ट होता है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड पार्ट ऑफ हिज ऑपुलेंस आर मैनिफेस्टेड एज परमात्मा, और कुछ उनका जो ऐश्वर्य है वो परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, ब्रह्म और परमात्मा कृष्ण के ऐश्वर्य है, ऑपुलेंसेस है, एक्सपेंशंस है। अब बात करते हैं आगे प्रभुपाद जी, दिस पुरुष फीचर ऑफ द सेम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड एंड श्री कृष्ण इज द ओरिजिनल परमात्मा मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। ये पुरुष जो है, पुरुष अवतार है, ये परमात्मा भगवान का जो, जिसको परमात्मा कहते हैं, उसका आदि रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो गया, एक ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है, एक पूरे यूनिवर्स का परमात्मा कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु, उसी में है तब वो यूनिवर्स चल रहा है ना। और सारे यूनिवर्स कहां से निकलते हैं, महाविष्णु कारण दक्षाय विष्णु से, वो भी परमात्मा कोटि में, वहां से परमात्मा सारे प्रकट होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा आध्यात्मिक जगत में नहीं है, परमात्मा भौतिक जगत की जरूरत है। परमात्मा इज ओनली नीडेड इन मटीरियल वर्ल्ड, देयर इज नो नीड ऑफ परमात्मा इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भौतिक जगत में, मटेरियल क्रिएशन में परमात्मा की जरूरत है। ये मुश्किल टॉपिक है, नहीं जाने वाला टॉपिक है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। नहीं समझ में आ रहा है, इज इट गेटिंग क्लियर। ऐसे होता है, कृष्ण, कृष्ण से बलराम, पहला कृष्ण का एक्सपेंशन है बलराम। बलराम पांच फार्म, क्रिएशन के लिए पांच फार्म, फाइव फार्म्स बलराम के हो जाते हैं। तीन विष्णु, अभी जिनके नाम लिए, कारण दक्षाय, गर्भ दक्षाय एंड क्षीरो दक्षाय, ये तीन विष्णु पर क्रिएशन। एक अनंत शेष इस पूरे ब्रह्मांड को सर के ऊपर धारण करने के लिए, अनंत शेष क्या करता है, सारे ब्रह्मांड अनंत शेष के हुड के ऊपर है, अनंत शेष के रूप में भगवान सबको धारण किया हुआ है, सब प्लैनेट्स को। मालूम है ये सब जितना ब्रह्मांड है किसके सर के ऊपर है, भगवान के सर के ऊपर अनंत शेष, ये चौथा हो गया। पांचवा बलराम जी भगवान की लीला में सहाय के लिए, सहायता के लिए आते हैं, ये वर्णन है चेतना चैतन्यता आदि लीला के तीसरे अध्याय में, शायद जहां तीसरे चौथे अध्याय में होगा, जहां नित्यानंद का वर्णन है कि पांच रूपों में बलराम जी सृष्टि के काम करते हैं। तो सृष्टि के काम ये कहां से, कृष्ण से बलराम निकला, बलराम से संकृष्ण, और संकृष्ण ये पांच रूपों में प्रकट होता है सृष्टि के लिए, जिसमें तीन विष्णु है इतना मान लीजिए, एक अनंत शेष है, एक संकृष्ण। तो ये इसलिए ये कृष्ण से निकलते हैं, लेकिन है परमात्मा कोटि में। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि जो परमात्मा की पूजा कर, जो विष्णु की पूजा करते हैं वो परमात्मा के पूजा करने वाले, जो विष्णु की पूजा करते हैं वो परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, वो परमात्मा स्वरूप है। इसलिए ज्यादातर आपको जो भी भारतीय बैकग्राउंड के लोग हैं वो परमात्मा ज्यादा उनको याद आएगा, परमात्मा परमात्मा बोध करे, परमात्मा ने नमः, परमात्मा ने नमः, ये ज्यादा मिलेगा। तो ये असल में विष्णु के उपासक हैं, परमात्मा की उपासना विष्णु की उपासना है ऐसे दिख रहा है, क्योंकि योगी किसका ध्यान करते हैं, परमात्मा का। हृदय में परमात्मा होता है, कौन परमात्मा कौन है, क्षीर दक्षा है विष्णु। तो योगी परमात्मा का ध्यान करते हैं, क्षीरोदक्षा विष्णु का ध्यान करते हैं। दी पुरुष फीचर ऑफ द सेम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड श्री कृष्ण इज द ओरिजिनल परमात्मा मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड। देर आर थ्री पुरुष फीचर्स इन द मटेरियल क्रिएशन, इन मटेरियल क्रिएशन, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहे हैं, मटेरियल क्रिएशन के लिए, भौतिक जगत के लिए ये तीन पुरुष अवतार हैं। अवतार होते काय के लिए, भौतिक जगत में आने के लिए, उसको अवतार कहते हैं। पहले जब शब्द अवतार आएगा मतलब उतर के आना, उतर के आना, अवतार का मतलब नीचे उतरना। जो उतर के आता है कहां आएगा, उतर के इस भौतिक जगत में। क्यों आता है, हम लोगों को सुधारने के लिए। तो भगवान का अवतार भौतिक जगत के लिए होता है। और तीन विष्णु के नाम क्या लिखे हैं, एक कारण दक्षा, एक गर्भोदक्षा, एक क्षीर दक्षा, अभी बात की हमने। इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस आर जनरेटेड फ्रॉम द स्किन होल्स ऑफ दिस कारण दक्षा विष्णु। और हर एक यूनिवर्स में, अभी गर्भोदक्षा अभी बात किया ना, ये कारण सागर है कहां, ये भौतिक जगत जहां समाप्त होता है ना, भौतिक जगत में लास्ट प्लानिट है सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। उसके बाद पर्दा है, एक कवर है, उस कवर के बाद एक रिवर है, ब्रज रिवर, वही कारण सागर है, वही कारण सागर है। उसके अंदर बहुत से यूनिवर्स ऐसे फ्लोट कर रहे हैं जैसे कद्दू घूम रहे हैं ना किसी नदी के अंदर, कद्दू डाल दो घूमते हैं ना, या बाल घूम रहे हो। सो इन्यूमरेबल यूनिवर्स लुढ़क रहे हैं उधर, या जस्ट गांव इधर उधर ऐसे कर रहे हैं कारण सागर में। जो ब्रजा नदी है वही कारण सागर है, उसके अंदर। तो आध्यात्मिक जगत में फिर वहां से जब क्रिएशन होगी तब नीचे आएंगे, नहीं तो उधर सारे ये यूनिवर्स कारण सागर में लुढ़क रहे हैं, जस्ट फ्लोटिंग देयर। यहां लंगर नहीं पड़े होते समुद्र में, लंगर ऐसे वहां पड़े हैं बहुत सारे। इन भगवत गीता इज ऑल्सो मेंशन दैट मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड एट सर्टेन इंटरवल एंड देन अगेन डिस्ट्रॉयड। ये कहां लिखा है भगवत गीता में, 8th चैप्टर 8वें अध्याय में लिखा है। लाइए आपके पास भगवत गीता में, दिखाऊं कहां लिखा है आपको, वो श्लोक पढ़ के दिखाऊं आपको। 8th चैप्टर में है ये, सहस्र युग पर्यतम अहर्यत ब्रह्मोविदो रात्रिम युग सहस्राम त्योहो रात्र विदो जना. By human calculation, 1,000 ages take together for the duration of Brahma's one day, and such are also the duration of his night. अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वः प्रभवन्ति हर आग्मे रात्रि आग्मे प्रलयन्ते तत्रैव अवक्त संयके. At the beginning of the Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest state. And thereafter, when the night falls, they are all merged into the unmanifest state. भूत ग्राम से एवायम भूतवा भूतवा प्रलियते रात्रि आग में अवश्य पार्थ पर भवन्ते हर आग में. अगेन एंड अगेन व्हेन ब्रह्मास डे अराइव्स ऑल लिविंग एंटिटीज कम इनटू बीइंग एंड व्हेन एंड विद द अराइवल ब्रह्मास नाइट दे आर हेल्पलेसली एनिहिलेटेड. ये वर्णन है, कभी है कभी नहीं है. मटेरियल क्रिएशन कभी है कभी नहीं है. और जो पहले आपको बताया था वो यहां है, 14वें में होगा. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम् ददामि अहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. द टोटल मटेरियल सब्सटेंस कॉल्ड ब्रह्म इज द सोर्स ऑफ बर्थ एंड इज दैट ब्रह्म दैट आई इम्प्रिग्नेट इन मेकिंग पॉसिबल बर्थ ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज और सन ऑफ भारत. तो ये है, ये जो ये भगवद गीता प्रभुपाद लिखते हैं, एक भगवद गीता इसका मतलब इसलिए लिखा है कि भगवद गीता आएगी तब भागवत समझ सकेंगे. तीन किताब प्रभुपाद जी ने कहा अगर आपके पास हैं तो आप सब प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो. फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवत, भगवद गीता टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य. यू कीप द थ्री बुक्स विद यू, देन यू कैन आंसर एवरीथिंग. तो हमको इसको अच्छा फिर क्या लिखा है, अब लिखा है द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन इज डन बाय द सुप्रीम विल बिकॉज ऑफ द कंडीशन सोल्स और नित्य बद्ध लिविंग मैगी. क्या जरूरत है क्रिएशन की, जरूरत क्या है, क्योंकि बद्ध जीवों के लिए करनी पड़ती. बद्ध जीव हुए क्यों, बद्ध क्यों हुए, जो नित्य बद्ध और एटर्नली कंडीशन सोल हैव दिस सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी और अहंकार व्हिच डिक्टेट्स देम सेंस एंजॉयमेंट which they are unable to have constitutionally. अब बद्ध जीव हुआ क्यों, अहंकार के कारण. अहंकार का मतलब मैं कुछ हूं, मैं भगवान से अलग हो गया. अहंकार का मतलब भगवान से अलग हो गया. हमारे इस दुनिया में आने का कारण है हमारा फॉल्स ईगो इज द मेन कॉज फॉर बद्ध जीवात्मा, फॉर कंडीशन सोल. तो ये हमारा असली स्वरूप नहीं है, बट एटर्नली कंडीशन सोल फॉरगेटफुल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन हैव स्ट्रांग एस्पिरेशन टू एंजॉय द चेंज टू एंजॉय नेचर इज गिवन टू कंडीशन सोल इन द मटेरियल वर्ल्ड. The chance to enjoy matter and side by side they are given chance to understand their real constitutional position. ये हो गई जेल की बात कि इस दुनिया में हम भोग करना चाहते हैं इसलिए दुनिया बनाई भगवान ने. हम भोग करना चाहते हैं इसलिए बनाई. कभी इसको ऐसे कहते हैं भगवान ने दुनिया क्यों बनाई. एक तो स्टेटमेंट ये है कि भगवान ने कहा मैं एंजॉय करना चाहता हूं. एको बहु श्याम, एक से अनेक हो गए और भोग किया. फिर भगवान ने कहा आप चलो वापस, पूरा हो गया भोग. कुछ ने कहा नहीं, अब हम यही रहेंगे, हमको अच्छा लग रहा है. इसको ऐसे समझ लीजिए, आप बच्चों को ले जाते हैं ना लामा या घुमाने के लिए, चलो घूमने चलते, सब कुछ हो जाते हैं लामे या चलो. उधर क्या करते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं ना मिट्टी के घर ऐसे बच्चे. फिर आप बोलते घर चलो, बोले नहीं हम इधर बैठे. बोलते नहीं बोलते, उनको अच्छा लगता है ना उधर बैठना. और हम छोड़ के आएंगे तो दुखी होंगे, लेकिन उस वक्त आपके साथ नहीं आते हैं ना. ठीक ऐसे ही भगवान हमको ले आकर चलते लामैया घूमते. हमने बनाए छोटे घर, भगवान ने बोला वापस चलो, बोले नहीं हम इधर रहते हैं. चलो हम क्या करेंगे, तुम्हारे को फ्री मिल है, रहना चाहे करो. ऐसे बहुत से लोगों को कभी टूर निकाल के भक्त कहते चलो आपको दुनिया के मंदिर दिखाएंगे, अमेरिका जाएंगे. बहुत लोग 100,000 to 300,000 देते थे अमेरिका घूमने के लिए. हम ले जाते थे, कुछ लोग हमारे ले जाते थे 50, वापस आते थे 5. 40वां गुम हो जाते थे, आते ही नहीं थे अमेरिका से। अमेरिका में इतना एंजॉयमेंट है, वाई टू गो बैक। तो ठीक ऐसे ही भगवान ने पहले कहा चलो घूमने चलते हैं, घूमने आया और कहा वापस चलो, हम जाने को तैयार नहीं। एक था गुरु, उसका था शिष्य। घूमते हुए एक गांव में आए और गांव में लिखा था, मानो ऐसे लिखा था, 2 रुपया किलो काजू, 2 रुपया किलो शूशू, 2 रुपया किलो जलेबी और 2 रुपया किलो बैंगन। ये बहुत सस्ता है। टके सिर खाजा, टके सिर भाजी। सिर मतलब किलो, टका मीन्स 2 पैसा। काजू भी उतने का और सब्जी भी इतने की। चेले ने बोला महाराज ये गांव बड़ा अच्छा है, सस्ता काजू खाएंगे। गुरुजी ने कहा बेटा सस्ता काजू खाएगा ये राजा कोई मूर्ख है, ये किंग इज डेफिनेटली कोई फूल है। अंधेर नगरी चरबट राजा, चरबट का मतलब फूल राजा, अंधेर नगरी है ये मूर्खों की नगरी है। यहां इतना सस्ता दोनों चीजें, सोना भी वो भाव और लोहा भी वो भाव, ऐसे कैसे हो सकता है? गोल्डन आयरन सेम रेट। बोला गुरुजी आप जानो आपका काम जाने, मैं तो यहां रहूंगा। गुरुजी चले गए, चेला रह गया उधर। बहुत काजू खाया, मुफ्त का सस्ता काजू था। एक आदमी को उस राज में हैंगिंग का सेंटेंस मिला कि इसको फांसी दे दो, फांसी दे दो, समझ रहे ना, फांसी दे दो। तो फांसी जो गवर्नमेंट की बनी हुई थी वो बड़ी थी, जिस आदमी को देनी थी उसका गला छोटा था, आ नहीं रही थी। तो राजा ने पूछा, राजा को कहा सर इसको तो फांसी नहीं दे सकते। बोले जिसे गले में आए उसको डालो। अब ये चेला जो मोटा खा के हुआ था इसके गले में फिट हो गई। अब जन तेरे को चढ़ाएंगे राजा ने कहा। अब बोलता है गुरु जी रक्षा करो, हे गुरु जी रक्षा करो, हे गुरु जी। गुरु जी आए, गुरु जी ने कहा ना तुमको बोला था बेटा या मत रहो, ये खाजू महंगे पड़ेंगे। गुरु जी अभी बस अभी मैं आपके साथ चलूंगा, अभी यहां नहीं रहूंगा, अब मेरा बस रक्षा करो। बोले पक्का चलोगे? बोले अब तो मैं जरूर चलूंगा, बस मैं खा लिया बहुत खाजू दे दिए। गुरु जी ने राजा को बोला महाराज मैं अभी अभी आ रहा हूं स्वर्ग लोक से, इस वक्त जो आदमी इस घड़ी में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। राजा बोला इसको फांसी मत दो, मेरे को फांसी दो। था राजा। असल में इस दुनिया में हम सब वो चरबट केले हैं, काजू खा रहे हैं। और फांसी गले में पड़ेगी तब बोलेंगे हे गुरु जी, हे गुरु। ये इसका यह है कि आए थे घूमने लेकिन घर बना के बैठ गए। दूसरा उदाहरण देते हैं, हम भगवान की संतान हैं, भगवान घूमने निकला, मानो गाड़ी चला के हमको ले जा रहा है गाड़ी में, जैसे आप ले हो ये, आप तो कम देखा है इसको, देखा है आपका गुल्लू, गुल्लू गाड़ी में आपके साथ बैठता है ना, छोटा इसका बच्चा बैठता है ना। अब जब ये आपके वो पोल लुइस की तरफ हाईवे पे जाए और गुल्लू बोले मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो क्या करेगा? ये बच्चा है, जिद करेगा, क्या करेगा? गाड़ी देगा उसको चलाने? देगा नहीं? देगा क्यों नहीं देगा? एक्सीडेंट कर देगा। लेकिन बच्चा है, बच्चा है, उसको भी नाराज नहीं करना, नहीं तो घरवाली घर में आने नहीं देगी। नहीं, बच्चा नाराज हुआ तो घरवाली घर में नहीं आने देगी बच्चे की माँ। तो अब क्या करना चाहिए? फिर क्या करेगा? फिर किसी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करेगा, एक टॉय गाड़ी खरीद करेगा। बोला ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम चलाओ, ये मेरी गाड़ी है, मैं चलाता हूं। बच्चा भी कुछ हो गया और एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। तो भगवान ये दुनिया चला रहा है सारी, भगवान दुनिया चला रहा है ना। हम कहते नहीं हम चलाएंगे, हम चलाना चाहते हैं। आप क्यों चलाते हैं? सब लोग आपकी पूजा करते हैं, हम चलाएंगे, लोग हमारी पूजा करेंगे। बेटा तुमसे नहीं चलेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं चलाऊंगा। नहीं नहीं हमको चलानी। बोला ठीक है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा दुकान है, ये तुम्हारी गाड़ी है, इसको चला के दिखाओ। अब किसी से नहीं चल रहा है घर। दुनिया में किसी को घर दे दिया है, किसी को दुकान, किसी को मकान, किसी को फैक्ट्री चलती नहीं, परेशान है। घर चलता नहीं दुनिया चलाएगा। तो ऐसे भगवान ने ये भौतिक जगत में हमको छोटी सी चीज अपनी दुनिया बना के दे दी है। ये दुनिया है, मेरी घर मेरा दुनिया है, मेरी परिवार मेरा, दुकान मेरा दुनिया है, उसी को चलाने में हम लगे हुए। फिर थक जाते, नहीं चलता है भगवान हमसे, पर तुमको बोला था नहीं चलेगा, तुम मेरे पास बैठो आराम से बैठ के खाओ ना, गाय के लिए परेशान कर रहा है। तो ये ऐसे दुनिया बनी है कि हम वापस जाने को तैयार नहीं थे। हम मूर्ख चेले हैं, काजू खाने में इतने मस्त हुआ फांसी तक पता लगेगी। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं दो काम है यहां दुनिया में, कि उसको भोग की इच्छा पूरी करने का मौका दिया जाता है, टू एंजॉय हिज डिजायर, एंड ऑल्सो चांस दिया जाता है कि वो अपने आध्यात्मिक स्वभाव को जाने। इसलिए सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, स्वतः अपने आप जीव भगवान की तरफ उन्मुख हुए ये संभव नहीं है। ऑन देयर ओन अपने आप कोई भगवान की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए भगवान ने कृपा करके वेद शास्त्र दिया, इसलिए भगवान ने व्यासदेव के रूप में आकर वेद शास्त्र दिया। और फिर साधु गुरु, शास्त्र गुरु और परमात्मा के रूप में भगवान, ये तीनों और आए ताकि हमको वापस अपने घर ले जाने में सहायता करें। अपने आप नहीं जा सकते, इसलिए भगवान ने तीन चीजें दी, शास्त्र भागवत पढ़ रहे, गुरु जो शास्त्र समझाएगा, और परमात्मा जो सबके हृदय में भगवान बैठा हुआ है, हमेशा बताता है ये सही है ये गलत है। आप सबको मालूम पड़ता है जब कोई काम करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, पता लगता है ना, ये कौन बताता है, ये परमात्मा बताता है। आपको मालूम है जब सब्जी बना रहे हैं तो उसमें नमक डालना है चीनी नहीं डालना है, मालूम है ना, कितना नमक डालना है, ये कौन बताता है। हम मुट्ठी भर के क्यों नहीं डालते हैं? थोड़ा डालते कौन बताता है ना? मिर्ची मत डालना कौन बोलेगा, पीमा नहीं डालने का कौन बताता है। परमात्मा अंदर बैठा है, किसने बता रहा है। गलत काम करते हैं अंदर से बोलता है मत करो, हम उसकी नहीं सुनते हैं, लेकिन हर वक्त सबको बताता रहता है। कॉन्शियंस इसको बोलते हैं, सबके अंदर है परमात्मा के रूप में। तो ये बात यहां कही जा रही है, दोज फॉर्चुनेट लिविंग एंटिटीज हु कैच द ट्रुथ एंड सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ वासुदेव आफ्टर मेनी मेनी बर्थ इन द मटेरियल वर्ल्ड ज्वाइन द इटरनली लिबरेटेड सोल्स एंड दस आर अलोड टू एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड। ये किस चीज की ट्रांसलेशन है? ये ट्रांसलेशन है भगवद गीता की वर्ष की, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। ये उस वर्ष की ट्रांसलेशन है। अगर कोई बुद्धिमान है, लिखा है कोई फॉर्चुनेट है, सौभाग्यशाली है आपकी तरह, तो उसको बहुत जन्मों के बाद ये निश्चय हो जाता है कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण ही सर्व से, और उसकी सेवा में लगना मेरा धर्म है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो बदजीव से मुक्त हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, वो आत्मा से महात्मा हो जाएगा, परमात्मा नहीं होगा, आत्मा से महात्मा। अब कोई लोग कहेगा कि आत्मा से परमात्मा बनना, बोलो नहीं परमात्मा नहीं, आप भूलते हो, आत्मा से महात्मा बन सकते हो, परमात्मा नहीं बन सकते हो, महात्मा बन सकते हो। महात्मा तो बने नहीं, परमात्मा बनने के चक्कर में पड़े। आत्मा महात्मा बन सकता है, सब महात्मा तो दुर्लभ, सब परमात्मा तो दुर्लभ, कहीं नहीं लिखा है। तो महात्मा बन सकता है, ऐसा महात्मा जो होता है स्वयं भी भगवत धाम जाता है और बहुत से लोगों को भी साथ ले जाता है। तो वो महात्मा कौन बन सकता है, उसका यह वर्णन है। After this, such fortunate living entities need not come again within the occasional material creation, but those who cannot catch the conscious truth are again merged into the mad tattva at the time of annihilation of the material creation. ये भी चाहिए आपको, देखो भगवद गीता में कहा है, 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक 14:2, इदं ज्ञानम् उपाश्रित्यः मम साधर्मम् आगताः, जो मेरे इस ज्ञान को धारण करेगा वो मेरे जैसे धर्म को पालन को प्राप्त करेगा। सर्गे पीनो बजायंती, जब सृष्टि होगी तब पैदा नहीं होगा। प्रलय न व्यंथंती, जब प्रलय होगी तब दुख नहीं भोगेगा। जो इस ज्ञान को धारण करेगा, कौन सा ज्ञान यहां लिखा हुआ है, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाननाम ज्ञानम उत्तमम ये ज्ञाता मुन्य सर्वे प्राम से निमितो गता। ये कौन सा ज्ञान है जो सब ज्ञानों से उत्तम है? बालू में कौन सा ज्ञान है? रोज गुरु पूजा में क्या गाते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। दिव्य ज्ञान किसको बोलते हैं? जो तीन गुणों से ऊपर का ज्ञान होता है। कि जो ये ज्ञान कौन सा है? तीन गुणों से ऊपर वाला ज्ञान है। साधर्मों का मतलब क्या है? साधर्मों का मतलब है नित्य लीला प्रवेशम, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करेगा। इन शब्दों का अर्थ ये है, अगर ठीक तरह कभी समझेंगे तो ये श्लोक बताता है जिसने ये ज्ञान प्राप्त किया वो जब सृष्टि होगी तब जन्म नहीं लेगा, और जब प्रलय होगी तब उसको दुख भोग के मर तत्व में जाके पड़ा नहीं रहना पड़ेगा। ये श्लोक का इसमें भाव है। एग्जैक्टली ये श्लोक एज इट इज 14:2 When it is again set up, this matter to again let loose. This matter contains all the ingredients of material manifestation, including conditioned soul. Primarily, this matter was divided into 16 parts. यहाँ ये श्लोक में था ना 16 matter तो समझते क्या है? matter तो क्या है? एक शब्द है प्रधान, एक शब्द है महत्तत्व। प्रधान मटेरियल क्रिएशन करने के लिए जो मटेरियल चाहिए और बद्ध जीव जो उसके साथ उनके लिए बनाना है वो सब मानो गोडान में पड़े हैं, अब काम में नहीं है, गोडान में पड़े हैं, उसको कहेंगे प्रधान। अब क्रिएशन करने का टाइम आ गया है तो सबको बाहर निकाल के साफ करके रखेंगे, जैसे फेस्टिवल से पहले बर्तन बाहर निकालने तो साफ करके बाहर रखें, उसका नाम है महत्तत्व। वही चीज है, पहले काम में नहीं है, अंदर पड़ी है गैरेज में 12 महीने के लिए गोडाउन में, फिर काम के समय उसको बाहर निकालनी, ये महत्तत्व है। तो महत्तत्व में क्या है? मेनली 16 चीजें हैं। 16 चीजें क्या है? 5 भूत। कौन से 5 भूत? पृथ्वी, आकाश, अर्थ, वाटर, ये, ठीक है, और 10 इंद्रियां और 1 मन। कितने हुए? 16। 10 इंद्रियां कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां आंख आदि, कर्म इंद्रियां पांव हाथ आदि, ठीक है, और 1 मन, ये 16 हो गए। ये मन तत्व में मुख्य रूप से है। फिर इंद्रियों के विषय आदि है, ऐसे करके 24 तत्व हो जाएंगे। और इनके साथ क्या है मर तत्वों में? जीव आत्मा, बद्ध जीव आत्मा, उसी के साथ पड़े हुए। अब जब क्रिएशन करनी होगी तब क्या होगा? पहले तो भगवान विष्णु उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे। कौन से विष्णु? असल में सदाशिव, जो गदाधर गदा ने, जो अद्वैत आचार्य का जो स्वरूप है महाविष्णु का, वो सदाशिव जो स्वरूप है, क्योंकि भौतिक क्रिएशन से भगवान विष्णु कोई हाथ नहीं लगाता है। जब भौतिक क्रिएशन के हाथ लगाना होता है तो वो सदाशिव के रूप में हाथ लगाता है, भौतिक क्रिएशन के, तब वो केवल नजर डालता है, दूर से ग्लांस करता है, उसमें हलचल पैदा होती है, तीनों गुण ऊपर नीचे होने शुरू करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी जब क्रिएशन करना शुरू करेगा तब ब्रह्मा जी क्या करता है? ब्रह्मा जी के पास समझो एक कंप्यूटर है, पहले एक जीव उसके सामने आएगा, ये जीव आया, इसके कर्म उसके साथ उसके कर्म का चिट्ठा आएगा, ये जीव है, इसके ये कर्म है। तो जीव देखेगा, ब्रह्मा जी ये जीव है, इसके कर्म क्या है? बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा दान पुण्य किया है, इसको देवता की श्रेणी में डालना चाहिए। तो 5 तत्व वही मटीरियल यहां पड़ा है, ये उठाएगा, कंप्यूटर में लिखेगा ये जीव, ये इसके कर्म, बटन दबाएगा तो देवता पैदा हो जाएगा, मर गया, क्योंकि वो सामान देगा सारा मटेरियल वहां से मेरा मर तत्व से। अब दूसरे जीव को निकालेगा ब्रह्मा जी, जीव
कर्म बदमाश था, लोगों से झगड़ा करता था, बटन दबाया कुत्ता बनेगा, तो मटीरियल वही डालेगा तो कुत्ता बन गया। मजदूरी बहुत करता था लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता था, गधा बनाओ भले मजदूरी करता रहे। तो ऐसे ब्रह्मा जी के कंप्यूटर में 84,000 स्पीसीज के मॉडल बने हुए हैं कि कौन सा किस में फिट होता है, बस बटन दबाना है, कर्म देखना है, बटन दबाना है, मसाला तैयार बाहर निकला। ऐसे ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नाम रूप आदि होते हैं, विष्णु की सृष्टि में केवल मत तत्व और जीव होते हैं, बद जीव वो बाहर आते हैं। तो ये यहाँ इसका वर्णन है, यहाँ ये श्लोक अब समाप्त होने पे आया है। 16 एलिमेंट के नाम बता दिए। तो ये मत तत्व कहाँ होता है फिर? ये ऐसे आता है जैसे आकाश के अंदर कोई बादल आ जाए, हाँ क्लाउड आ गया आकाश में, जैसे कोई क्लाउड आता है ऐसे क्लाउड की तरह आता है। इट इज लाइक द क्लाउड, मत तत्व इज लाइक ए क्लाउड इन द क्लियर स्काई, इन द स्पिरिचुअल स्काई द इफ्यूजन्स ऑफ द ब्रह्म इज स्प्रेड ऑल अराउंड एंड द होल सिस्टम इज डेजलिंग इन स्पिरिचुअल लाइट। मत तत्व इज असेंबल्ड इन सम कॉर्नर ऑफ द वास्ट अनलिमिटेड स्पिरिचुअल स्काई एंड पार्ट विच इज दस कवर्ड बाय मत तत्व इज कॉल्ड मटीरियल स्काई। भाई सारा इसका इसका है, लेकिन जहां बादल है, जहां क्लाउड आ गया है, उसको बोला यार अंधेरा हो गया, उसके नीचे अंधेरा हो गया, तो वो मटीरियल स्काई हो गया, अंधेरा हो गया इसलिए क्योंकि क्लाउड आ गया। जैसे जैसे स्काई तो इंडिया में यही स्काई दूसरा है, स्काई में स्काई इंडिया का यही है दूसरा है, अमेरिका भी यही है, लेकिन यहां क्लाउड है तो यहां सन नहीं दिखता है, वो इस वक्त कहीं रात होगी रात को। तो ऐसे जहां रात होती है वो मटेरियल वर्ल्ड है, जहां दिन होता है वो भगवान का घर है। तो क्लाउड जहां आ गया मटेरियल वो अंधकार हो गया, तो उसको मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं। जहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्लाउड आएगा उतना पोर्शन उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल स्काई। दिस पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई कॉल्ड मत तत्व इज ओनली एन इनसिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द होल स्पिरिचुअल स्काई एंड विद इन दिस मत तत्व देयर आर इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। All these universes are collectively produced by Karma Daksha Vishnu, called Mahavishnu, who simply throws his glance to impregnate the material sky. वो जो कहा था गर्भम ददामि अहम्, तो यहां ये पर्पट पूरा हुआ आज के पुरुष अवतारों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण क्रिएशन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए पहले महत्पुरुष अवतार लेता है, फिर महत्त्व को निकालता है और फिर ये क्रिएशन होती है इन विष्णु के द्वारा। ये इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई क्वेश्चन सर कमेंट बोलो। नारायण क्या क्वेश्चन है?
तो जब जीव किसी के हाथ जन्म लेता है तो ब्रह्मा जी माता पिता पहले से निर्धारित कर देते हैं कि क्या होता है?
ब्रह्मा जी किसी का निर्धारण नहीं करता है। आदमी पहले से ही जिससे उधार ली है, जिसको उधार देनी है उसी के घर में जाएगा। तो किसकी किसी का क्रेडिट है, किसी का डेबिट है, उसके पास जाना पड़ेगा। किसी को किसी घर में बेटा पैदा होगा, उस पहले से बहुत उसको दिया है, मांगता है, आएगा सारा खर्चा कराएगा बैठ के, और किसी से लिया हुआ ऐसे आके उसके घर में बहुत काम करेगा, मेहनत करेगा, कमा के बाप को खिलाएगा। तो ऐसे ही बच्चे आते हैं, कोई खिलाता है कोई रुलाता है, कोई मांगने वाला है कोई देने वाला है, लेकिन ऐसे आते इसलिए है जो जो जिसका जिसका लेना देना है उसको पूरे करने के लिए आते। जिसका बिल्कुल इसलिए दिखता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ओ, 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 जो जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो भगवान नीले रंग का है, इसलिए नीला दिखता है ऊपर। ये ब्रह्म ज्योति भगवान के वहां से निकल रही है, ये स्काई हमको दिखता है, ये भौतिक स्काई है। इसमें जहाज को ऊपर से घूम रहे हैं। जहाज में कौन ज्यादा घूमता है? जो जहाज में ज्यादा घूमता है उसको नेक्स्ट बर्थ में क्या मिलेगा?
चिड़िया बनेगा, हवा में उड़ेगा, इतना ही शौक में हवा में उड़ने का तो चिड़िया बन गया भाई, क्यों मानव जन्म को खराब कर? प्रचार के लिए जाना है तो ठीक है, नहीं तो चिड़िया बनो। हवा में उड़ने का शौक इतना है तो चिड़िया बन जाओ, क्या जरूरत है इसकी? तो ये स्काई मटीरियल स्काई, क्योंकि मन तत्व के अंतर्गत आता है जो क्रिएशन है, ये स्पिरिचुअल स्काई हमको इन आंखों से नहीं दिखेगा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।